ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ, ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಶ ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಶ್ಚಿಕೀ. ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿರಾಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರೂನ್ ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯ್ಯಹಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಿತಾಶ್ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ್ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಕಲ್ ಹಮನೆ ಯೇ ಆಠವಾ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಜೋ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ವಿಧಿ ಕೋ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲ ಉಸ್ ಸುಂದರ ವಪ್ಪು ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ಕೆ ಪಹಲ ದೋ ಶ್ಲೋಕೋ ಮೇ ಔರ್ ಬಾಕಿ ಪಾಂಚ್ ಶ್ಲೋಕೋ ಮೇ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವ ಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಭಕ್ತಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಔರ್ ಕೈಸೆ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಉಸ್ಕೋ ಆಠವಾ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ. ತತ್ತೇನ ಕಂಪಾ ಸಮೀಕ್ಷಮಾಣು ಪುಂಜಾನಮೇವಾತ್ಮಕೃತ ವಿಪಾಕಂ ಹೃದ್ವಾಗುಪರ್ವಿಧಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಜೀವೇ ತು ವಿಮುಕ್ತ ಪದೇ ಸಾಹಿಬ್ ಧಾಯ ಭಾಗ್. ಜೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ನಾ ಜೀವನ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ, ದೂಸರಾ ಅಪ್ನೆ ಪುಂಜಾನಮೇವಾತ್ಮಕೃತ ವಿಪಾಕಂ ಉಸ್ಮೇ ಸುಖ ದುಃಖ ಜೊ ಭೀ ಆತಾ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕೃಪಾ ಹೇ ಮೇರೇ ಕರ್ಮೋ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೇ ಆ ರಹಾ ಹೇ ಐಸಾ ಸಮಜ್ತಾ ಹೇ. ಔರ್ ತೀಸರಾ ಹೃದ್ವಾಗುಪುಭೇರ್ ಹೃದಯ ಸೆ ವಾಣಿ ಸೆ ಔರ್ ಮನ್ ಔರ್ ಶರೀರ ಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಶರಣಾಗತಿ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಔರ್ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತಾ ಹೇ, ಯಾನಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ವಿಧಿಯೋ ಕೋ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚ. ಔರ್ ಜೀವೇತ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೊ ಜೀತಾ ಹೇ ವೋ ಮುಕ್ತಿ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ವೋ ಮುಕ್ತಿ ಜೊ ಹೇ ಉನ್ಕಾ ಹಕ್ ಬನ್ತಾ ಹೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಉನ್ಕಾ ಹಕ್ ಬನ್ತಾ ಹೇ. ಜಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಕ ಪುತ್ರ ಕಾ ಅಧಿಕಾರ ಪಿತಾ ಕಿ ಉಪರ್ ರಹತಾ ಹೇ ಪಿತಾದಿ ಕಾ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೆ ಉಪರ್ ರಹತಾ ಹೇ. ತೋ ಕಲ್ ಯೇ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯೇ ಯೇ ಆಜ್ ಸೇ ಆಜ್ ಕುಚ್ ಆಗೆ ಕೆ ಕುಚ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಶ್ಲೋಕೋ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ನಾ ಕಿಯೇ ಹುವೆ ಜೊ ಭೂಲ್ ಹೇ ಅಪರಾಧ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಪಚ್ತಾ ರಹೆ ಪಚ್ತಾ ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತೆ. ತೋ ಕಿಯಾ ಹುವಾ ಅಪರಾಧೋ ಕಾ ಪಚ್ತಾವ್ ಯೇ ಭಕ್ತ ಕಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಹೋತಾ ಹೇ. ಪಚ್ತಾನಾ ಅತಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೇ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಲಿಖತೆ ಹೇ ಯೇ ಸತ್ವಗುಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇ ಅಪ್ನೆ ಹುವೆ ಕಿಯೇ ಹುವೆ अपराधों का, गलतियों का पछताता है, क्योंकि पछताने से वो अपराध कम होते हैं, कभी नाश भी हो सकते हैं। कोई भी गलती किया पछताना चाहिए, भगवान के सामने आके पछताना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा गलती किया, इतना बड़ा अपराध किया, तो ये अपराध की क्षमा मांगते हुए पछता रहे ब्रह्मा जी, और बहुत सुंदर श्लोकों से वो भगवान की स्तुति को आगे, इन स्तुतियों को, इन प्रार्थनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके प्रसंग में 9वां श्लोक को मेरे बाद उच्चारण कीजिए। पश्येषमेनान्यनन्त आढ्ये पश्येषमेनार्यमनन्त आढ्ये परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनीम् परात्मने त्वय्यपि मायि मायिनी मायां विततेक्षितमात्मवैभवम् मायां विततेक्षितमात्मवैभवम् यं कियां मैच्छम् इवार्चिग अग्नो यं कियान्या यं कियान् इच्छम् इवार्चिराग्नो पश्येषमेनार्यमनन्त आढ्ये पश्येषमेनार्यमनन्त आढ्ये परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनि परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनि मायां विततेक्षितमात्मवैभवम् मायां विततेक्षितमात्मवैभवम् यं कियानैच्छमिमार्चिराग्नो इवार्चिराग्नो पश्येषम् आर्यमनन्तमाध्ये परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनि मायां विततेक्षितमात्मवैभवम् इयं कियानैच्छमिवार्चिराग्नो। तो ये श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, जब कोई गलती करता है, अपराध करता है, उसके दो फल हो सकता है। फल मतलब दो चीज़ों का आशा कर सकता है एक गलती करने के द्वारा। एक पनिशमेंट यानी दंड का आशा कर सकता है, दूसरा माफ़ी का आशा कर सकता है। तो ये दोनों मेरे सामने हैं, मुझे दंड देना चाहिए आपको। क्यों दंड देना चाहिए? अगर दंड नहीं मिलता है तो ये समझ लीजिए कि गलती वापस करेगा, तो इसलिए मुझे दंड दीजिए। और साथ साथ में क्षमा का भी मैं याचना करता हूँ, यानी दोनों साथ साथ में हैं। इसलिए ब्रह्मा जी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, हे भगवान, पश्या, आप देखिए। पश्या मतलब देखिए, क्या देखिए? पश्य मेरा अनार्यम, पश्य ईशा मे अनार्यम, पश्येश मे अनार्यम। पश्य ईश मतलब, ईश मतलब कंट्रोलर, आप तो नियंता हो, आप कुछ भी कर सकते हो, दंड भी दे सकते हो मुझे और माफ भी कर सकते हो, ये दोनों दे सकते हो ईशा। लेकिन पहले देखिए पश्य में मेरा अनार्यम, अनार्यम मतलब मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर या हिंदी में क्या कहेंगे मिसबिहेवियर को, दुर्व्यवहार, मेरा आपके प्रति दुर्व्यवहार है। वो देखिए ये क्यों दुर्व्यवहार है, क्योंकि आप आधे, आधे मतलब आप कौन हो, आप मेरा ही आदि हो, यू आर माई फादर। अगर यही कार्य मैं अपने बच्चों के प्रति करता या मेरे समान लोगों के प्रति करता तो ये दुर्व्यवहार नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को एक वचन में बुलाना, तो मित्र को बुला सकते हो या अपने छोटे भाई को बुला सकते हो या कोई कम उम्र वाले बुला सकते हो, लेकिन एक वचन में बड़े लोगों को बुलाना, वही कार्य वही बात किया जाए तो वही दुर्व्यवहार होता है। जो व्यवहार या अच्छा व्यवहार माना जाता है मित्रों के समाज में, अन्य समाज में, बड़ों के प्रति वही व्यवहार नहीं चलता है। तो ब्रह्मा जी समझ गए मैंने आपके प्रति दुर्व्यवहार किया। अगर यही चीज़ मैं किसी और के प्रति, इंद्र का परीक्षा करने जाता या कोई अन्य देवता को समझने के लिए उनके ऊपर, उनके सामने मेरा अपना शक्ति पराक्रम को दिखाने जाता तो ठीक होता है, दुर्व्यवहार नहीं माना जाता। लेकिन मैंने आपके प्रति दिखाया जो मैं ये भूल किया, क्योंकि आप मेरे पिताजी हो आद्य। तो इसके द्वारा भगवान ब्रह्मा जी इस बात को स्मरण कर रहे हैं या भगवान को इस बात को कह रहे हैं, हे भगवान आप मेरे पिताजी हो और मैंने आपके प्रति दुर्व्यवहार किया, तो इसलिए मुझे पनिशमेंट आपको देना चाहिए। पिताजी बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, वो देना चाहिए, सही बात है। बाद में आगे उन्होंने कहा कि आप अनंत हो परात्मनि, आप अनंत और परात्मनि, परात्मनि आप महान हो, यू आर अनंत एंड परात्मनि, आप सुपर सोल सब कुछ जानते हो परात्मनि, त्वय्यपि माया मायिनी। तो ये तीन उपमा नहीं बल्कि एडजेक्टिव्स दिया, विशेष दिया गया भगवान के लिए। एक है आप अनंत हो, दूसरा परमात्मा हो और तीसरा माई माइनीम, यानी बड़े बड़े माइयों को भी माया जाल में डाल सकते हो। बड़े बड़े योग माई लोग है या बहुत शक्तिशाली लोग है, जैसे मैं भी था वैसे अनेकों देवता है, वो माई मतलब, माई मतलब बहुत लोगों को मोह में डाल सकते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है। तो वैसे लोगों को भी आप मोह में डाल सकते हो, अनंत हो परमात्मा हो और माई मायनी हो। और मैंने क्या किया, आपके ऊपर मैं अपना माया दिखाने के लिए प्रयास किया, मैं आपको मोहित करने के लिए मैंने प्रयास किया, ये मेरी मूर्खता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी मूर्खता किस प्रकार है, मेरी मूर्खता इस प्रकार है कि अहम कियान ऐच्छम इवार्चिराग्नौ। अर्ची मतलब एक स्पार्क, एक अग्नि है, अग्नि से जब स्पार्क उत्पन्न होता है, एक पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग जो है अग्नि का, ये इसका तुलना अपने आप से करते हैं और आप महान अग्नि के बराबर हो। अगर ये पुल्लिंग समझने लग जाए, क्या समझने लग जाए कि मैं अग्नि को जला दूं, ये मूर्खता है कि नहीं, तो उसी प्रकार आप माइयों का भी माई हो, सबसे महान माया से उत्पन्न हो या दूसरों को मोह में डाल सकते हो, इतना माया जाल आपके पास है, पूरा सारे जगत को मोह में डाल के रखे हो और मुझे भी मोह में डाल के रखो, तो मैं तो आपसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो आपको मोहित करने के लिए प्रयास करना ये मेरी मूर्खता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने, मेरे पास दो अवगुण है, एक है अनार्यम, अनार्य मतलब दुर्व्यवहार किया है, दूसरा है मूर्खता है। अभी जो व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो उसको दंड देना चाहिए, लेकिन जो मूर्खतापूर्वक कुछ करता है उसको माफ़ करना चाहिए। यानी ब्रह्मा जी अपने आप को ये दो अवगुणों को प्रस्तुत कर रहे हैं अपने अंदर, एक है दुर्व्यवहार, दूसरा क्या है मूर्खता। तो दुर्व्यवहार करता है तो उसको दंड देना चाहिए, दुर्व्यवहार का फल है दंड, मूर्खता का फल दंड नहीं माना जाता है। क्योंकि आप मूर्ख को दंड दो या समझाने जाओ तो उल्टा आपके ऊपर रिएक्शन आता है कि नहीं, तो मूर्ख को कभी दंड भी नहीं देना चाहिए और ना उनको समझाने जाना चाहिए। वो मूर्ख है तो ऐसा शास्त्र में कहा है, ये हमारे 11th स्टैंडर्ड की संस्कृत बुक में था, मूर्ख पद्धति, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मूर्ख चित्तम आराधयेत, उनको मूर्ख का जो चित्त है या उनकी बुद्धि है उसको कभी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जैसे कुत्ते का पूंछ है, उसको कितना भी सीधा करने जाएंगे वो नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार ये संसार का रीति है कि मूर्ख अगर है तो उसका कभी वो परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी तो एक स्टेप आगे जाते हैं, मूर्ख का एक स्टेप आगे है दूर्त, दूर्त मतलब रास्कल। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए फूल एंड रास्कल। मूर्ख मतलब फूल, जो जानता नहीं है वो मूर्ख है, लेकिन रास्कल यानी दूर्त है जो जानना नहीं चाहता है वो दूर्त है, ही इज़ ए रास्कल। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू बी ए फूल देन टू बी ए रास्कल। तो ये साइंटिस्ट लोग जो है वो कौन है, वो रास्कल है क्योंकि वो जानना नहीं चाहते, दे डोंट वॉन्ट टू नो। तो ब्रह्मा जी कम से कम ठीक है अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करना गुरु के सामने, वरिष्ठ लोगों के सामने, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरणागति का। एक तरीके से कहा जाए सबसे पहला अंग है, क्योंकि अगर मैं बहुत समझदार होकर के जाएंगे तो शरणागति पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। तो अगर दूसरों का बात सुनना है अपने आप को मूर्ख मानना ही पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला उदाहरण है अर्जुन का। अर्जुन भगवान का शरणागत हुआ, उन्होंने कहा धर्म सम्मूढ़ चेता, मूढ़ मतलब क्या है मूर्ख, अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया और भगवान ने उनको कहा भी इनडायरेक्टली कहा हे मूर्ख पंडिता नानु सोचंती, नानु सोचंती पंडिता, पंडित लोग इस प्रकार नहीं सोचते, इनडायरेक्टली कहा। तो भगवान की बड़ा चतुर है, उनकी जो वाणी है, भगवान की वाणी है वो डायरेक्ट में कभी रहता नहीं, कभी इनडायरेक्टली रहता है, मोस्टली इनडायरेक्ट रहता है। तो एक व्यक्ति को मूर्ख कहना है दो प्रकार कह सकते हो, तुम मूर्ख हो डायरेक्टली कह दो, दूसरा है बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करते लेकिन तो ये डांटने का भी तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे बच्चों को कह सकते, एकदम छोटा बच्चा है तो उसको कहते हैं तुम मूर्ख नालायक कैसा कह सकते हो, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो, जैसे श्री राधा माधव बच्चा बड़ा हुआ तो उसको बोलेंगे तो रुट जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कैसे जो बड़े बच्चों को या थोड़ा सा जिनको एक समाज में कुछ स्थान है, कुछ सम्मान है, उसको उनको डांटना है तो बहुत तरीके से डांटना होगा। कैसे डांटना होगा, जैसे मूर्ख ही कहना है तो बोलना होगा कि ये तो बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है उनको भी अच्छा लगेगा सुनने और काम भी हो जाएगा। सांप जैसे को कहते हैं ना, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए ऐसा। इसको भगवान कहते हैं भगवद गीता में वांग्मयम तप उच्चते, वांग्मयम तप उच्चते मतलब अपना जो वाणी का तपस्या है क्या है वो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रहितम चेत स्वाध्यायस। सबसे पहला अनुद्वेगकरम, हमारा वाणी जो है अनुद्वेगकरम ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को उद्वेगित नहीं करना, तो उत्तेजित नहीं करना चाहिए, गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनको दूसरों को हित के लिए बोलते हैं, उनकी अच्छाई के लिए बोलते हैं, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति को गुस्सा दिला देते हैं, भले ही उनका उनके सम्मान के लिए बोलते लेकिन गुस्सा दिला देते हैं। तो बहुत कंट्रोल होना चाहिए वाणी के ऊपर। भगवद गीता में जब भगवान ने अर्जुन ने प्रश्न पूछा सित प्रज्ञश्च खा भाषा सितदे किम प्रभाषेत, उस श्लोक की तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, ए मैन इज आइडेंटिफाइड बाय हिज स्पीच, एक व्यक्ति का पहचान होता है अपनी वाणी से, तो जितना उसके वाणी के ऊपर नियंत्रण है उतना वो कामयाबी को प्राप्त कर सकता है, उतना सक्सेसफुल हो सकता है, उसको उतना मान्यता प्राप्त होता है। क्योंकि ये सारा दुनिया ये शब्दों के ऊपर ही टिका हुआ है, ये शब्दों का खेल है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि आपका जो जिह्वा है उसके ऊपर आधारित है, दूसरा को मित्र बनाएंगे या शत्रु बनाएंगे। तो आप जिस प्रकार बोलते हो उस प्रकार वो मित्र या शत्रु है। अगर आप मीठे वचन कहते हो तो आप वो व्यक्ति जो है वो आपका मित्र बनता है, कटु वचन कहते हो तो वही व्यक्ति जो है वो आपका दुश्मन बनता है। केवल जिह्वा के ऊपर आधारित है, आप क्या बोलते हो उसके ऊपर आधारित है पूरा जगत आपके लिए, आपका दुनिया आपके लिए क्या है आपकी वाणी के ऊपर है। तो ब्रह्मा जी बड़ी एक्सपर्ट है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को मूर्ख के रूप में पेश किया। तो अपने आप को मूर्ख के रूप में वरिष्ठों के सामने पेश करने से वरिष्ठों का कृपा भी प्राप्त होता है और साथ साथ में हमारा काम भी बन जाता है। स्वभाव है गलती करना हमारा, इट इज़ वेरी नेचर, क्योंकि चार प्रकार के दोषों में गलती करना एक दोष, एक प्रवृत्ति है, वन ऑफ द मिस्टेक्स। हम कभी भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कर भी दिया तो भी दुनिया आपको परफेक्टली देखती नहीं है। कभी आप आशा मत करो इस जीवन में कि आपको सब लोग आके वाह बहुत अच्छा काम किया ऐसा बोलेंगे, कोई ना कोई दोष ढूंढेगा ही, ये जगत का निर्माण ही ऐसा हुआ है। इसलिए अपने आप को मूर्ख के रूप में पेश करने से गलतियाँ हो ना हो हमको माफ़ी मिल जाता है और साथ साथ में हमारा काम भी निकल जाता है, उनको उनकी सहायता भी प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी क्या किया, उन्होंने प्रकाश संसर्ग ने पूछा कि आप ऐसा भावुक जैसे क्यों नाचते हो, तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान उन्होंने प्रकाश संसर्ग समय क्या कहा, तो मैं गया था मेरे शिष्य गुरु के पास और मेरे गुरु ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, आई एम ए फूल। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को ये नहीं कहा कि मैं तो मूर्ख हूँ, ऐसा नहीं कहा उन्होंने प्रकाश संसर्ग सामने, यही बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहानी बता के किया। वैसे ईश्वरीपुरी के पास जाके उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ईश्वरीपुरी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। तो लेकिन प्रकाश संसर्ग सामने उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के पास गया, मेरे गुरु ने कहा तुम मूर्ख हो, तो तुमको वेदांत की कोई आवश्यकता नहीं है, वेदांत तुम समझ नहीं सकते हो। दूसरे शब्दों में उसके वो श्लोक में जहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उधर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इनडायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु प्रकाशन सरस्वती को मूर्ख कह रहे हैं, यानी प्रकाशन सरस्वती तुम मूर्ख हो, वेदांत जो है मूर्खों के लिए नहीं है, अभी तुम मूर्ख हो, वेदांत तुम्हारे लिए नहीं है, असली वेदांत मैं जानता हूँ। इसी बात को थोड़ा सा स्टोरी के फॉर्मेट में बता रहे, मैं अपने गुरु के पास गया और मैंने कहा मुझे वेदांत सीखना है, मेरे गुरु ने कहा वेदांत जो है मूर्खों के लिए नहीं है, तुम मूर्ख हो। तो ये साहित्य में इतना रस है, अस्तित्व में भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए अगर कुछ रस है तो साहित्य में है, इट इज़ देयर इन लिंग्विस्टिक्स। इसलिए पहले ज़माने में ऐसा था कि एक बच्चे का या किसी का भी कल्चर यानी उनकी संस्कृति बुद्धि ज्ञान अगर मापना है उसकी जो लिंग्विस्टिक उनकी भाषा की जो शुद्धता है उसके ऊपर आधारित होता था। ऐसा नहीं था कि बड़ा इंजीनियर है तो उसको मान्यता दिया जाता है, नहीं, तो इंजीनियर मतलब शूद्र है, लेकिन जो भाषा का निपुणता है उसको ब्राह्मण माना जाता था, भले उसको हैमर स्पैनर पकड़ना नहीं आता हो, उसको रस्सी बांधना भी नहीं आता हो, उसको मूर्ख नहीं कहा जाता हो। अगर अच्छा बोल सकता है या उसको भाषा का निपुणता है तो पढ़ाई लिखाई मतलब यही भाषा, इंजीनियरिंग डॉक्टर ये पढ़ाई लिखाई नहीं माना जाता था, वो तो आर्ट है, वो तो ये कला है, शिक्षा मतलब ये है भाषा को जानना। तो आचार्यों ने और शास्त्रों में ये लिंग्विस्टिक के द्वारा भाषा के द्वारा परम सत्य को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए खास करके हर बच्चा को या खुद को भी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, भाषा जानना चाहिए। तभी व्यक्ति का संस्कृति आगे बढ़ता है। शुद्ध भाषा होगा, मन भी शुद्ध होगा। अगर मन शुद्ध होगा तो निश्चित रूप में सात्विक बनेंगे। इसलिए प्रशिक्षण, बच्चे का प्रशिक्षण मतलब यही है, वो कैसे बोलता है। हमको अभी भी याद है बचपन में अगर ये तू करके शब्द निकला तुरंत मुंह में चाटा पड़ता था ये, और कुछ भी अपशब्द एकवचन तो इस्तेमाल किया तो तुरंत मार पड़ती थी। लेकिन अभी तो भाषा का कोई क्वालिटी नहीं रहा, एकदम बहुत वेरी लो क्लास हो गया है। अभी तो इधर तो काफ़ी ठीक है लेकिन बॉम्बे में तो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। और कौन सी भाषा वो भी नहीं मालूम पड़ता, वो हिंदी है मराठी है, पहचाना मुश्किल होता है। तो अभी ये बात कह सकते हैं कि अभी स्कूल में अंग्रेज़ी बोलते हैं लेकिन वो अंग्रेज़ी का क्वालिटी भी इतना लो क्लास है, वो कहाँ का अंग्रेज़ी वही नहीं मालूम। वो अमेरिकन बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते हैं देसी, और देसी बोलने के जगह पे कुछ और बोलते हैं, कोई कोई ग्रामर नहीं और कोई कुछ नहीं। अभी पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे कम से कम अंग्रेज़ी तो अच्छे से सिखाते थे। अभी इतना हद तक कि स्कूल में टीचर अंग्रेज़ी टीचर भी अंग्रेज़ी बराबर सिखाती नहीं है, उन खुद को नहीं मालूम। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इधर चैतन्य महाप्रभु अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किए गुरु के सामने, तो गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम मान लें तुम ये हरे कृष्ण मंत्र जप करो। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगे तो बाद में उनके अंदर पूरा अश्वसात विकार प्रकट हुए, तो फिर वापस अपने गुरु के पास गए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे किनको, प्रकाश स्थान सरस्वती को। तो जैसे मैं गया तो मैंने कहा कि इस प्रकार हो रहा है, तब मेरे गुरु ने कहा ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है ये करते करते जिसके अंदर इस प्रकार भाव के लक्षण प्रकट होते हैं ये तो जीवन का सिद्धि है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु इनडायरेक्टली प्रकाश सरस्वती को शिक्षा दे दिया, उन्होंने सारा वेदांत सुना दिया। वेदांत मूर्खों के लिए नहीं है, वेदांत का जानना मतलब इस प्रकार के जो भाव के लक्षण प्राप्त करना, यानी तुम्हारे अंदर इस प्रकार के भाव के लक्षण नहीं है इसका मतलब तुम वेदांत जानते नहीं हो। अब अपने आप को मैं जानकार के रूप में स्वीकार करते हो इसलिए मूर्ख ही नहीं हो, तुम महामूर्ख हो। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु कितने चतुर है इससे प्रकाश संस्कृत को बताए। तो दूसरे शब्दों में अपने आप को मूर्ख के रूप में जाना गुरु के सामने बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैं जानता हूँ इस भाव से अगर गुरु के पास जाया जाता है, भगवान के पास जाया जाता है, वो कितना भी बोलेंगे वो अंदर नहीं जाएगा। ये कितना जानता, ये तो मैं जानता हूँ ना, अच्छा ठीक है एक दो बातें नहीं जानता होगा चलता है, नहीं जानता हो तो भी चलेगा। तो ऐसी बात, इसलिए ब्रह्मा जी अपने आप को आदि कवि, ये साधारण चीज़ नहीं है। एक ब्राह्मण हो विद्वान हो उसको उनको इस स्तर में आना कि मैं अपने आप को मूर्ख मानना, ये साधारण ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये दिखाई पड़ रहा है इधर, ब्रह्मा जी तो एक साधारण सा अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। एक जो ये लाइन है अपने आप को मूर्ख कह रहे ब्रह्मा जी, ये लाइन के पीछे गहराई को जानिए। गहराई ये है आदि कवि, अगर आप जो पढ़ाई किए हुए पढ़ लिख के आते प्रोफेसर है उनको खाली इतना बोलिए कि आप ये नहीं जानते हो क्या, वो कितना गुस्सा हो जाएंगे, बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ये जो पांडित्य का जो अहंकार है, विद्वत्ता का जो अहंकार है, ये साधारण लोग नहीं समझ सकते, जो विद्वान है वही समझ सकता है। ये अहंकार बहुत खतरनाक है, इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। धन से उत्पन्न हुआ अहंकार भी खतरनाक कहा गया है, केवल उसको वो अहंकार केवल इंद्रिय तृप्ति में लेके जाता है, स्थूल इंद्रिय तृप्ति में लेके जा सकता है। लेकिन विद्वत्ता से उत्पन्न हुआ अहंकार है वो सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पे लेके जाता है, यश प्राप्त करना सम्मान प्राप्त करना, ये लालसा बहुत रहता है, अपनी विद्वत्ता को पेश करने की लालसा बहुत रहता है। और उसको ज़रा सा भी कुछ भी कोई व्यक्ति कह जाए तो आपको ये मालूम नहीं, उनको बहुत दुख लगता है। लेकिन ब्रह्मा जी कौन से स्थिति से आदि कवि वो कृष्ण के सामने आके कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मैंने बड़ा गलती काम किया, इतना बड़ा मूर्ख हूँ, जैसे एक स्पुल्लिंग सोचने लग जाए मैं अग्नि को जला दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये मूर्खता है उस स्पुल्लिंग का, उसी प्रकार मैं अपनी माया को दिखाया। लेकिन एक तो अच्छा काम हुआ, मैं अपना ये मूर्खता से क्या हुआ, ये मूर्खतावश मायाम वितेक्षितुम आत्मवैभवम, वितेक्षितुम ईक्षितुम मतलब मैं देखा, अज्ञान वश तो ज्ञान वश तो किसी प्रकार मैं अपनी मूर्खता को पेश करके मैंने क्या किया, मैंने देखा, देखा मतलब ईक्षित मतलब मैंने देखा, क्या देखा, आत्मवैभवम, आपका जो वैभव है, आपका जो पराक्रम है, शक्ति है, उसको मैंने देखा। तो ब्रह्मा जी इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि भले ही मैंने गलती किया है, आप उसके लिए दंड दे सकते हो, मैंने गलती अपनी मूर्खतावश किया, तो ये मूर्खतावश करने की वजह से क्या हुआ, मेरे अंदर नम्रता तो आई, वो तो अलग बात है, लेकिन साथ साथ में आत्मवैभवम, आपका आत्मवैभव, आपका जो पराक्रम है, शक्ति है, उसको दर्शन करने को करने का सौभाग्य मिला, ये केवल आपकी कृपा की वजह से हुआ। यानी दूसरे शब्दों में किसी न किसी तरीके से भगवान के संपर्क में आता है, अपराध या मूर्खतावश भी आता है, अपराध की दृष्टिकोण से ही भगवान के पास आता है, तो भगवान अपना जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ते। जैसे अग्नि में जानबूझ के हाथ डालो, उसको बुझाने के लिए हाथ डालो, कुछ भी करो, अपना स्वभाव अग्नि नहीं छोड़ता है, वैसे भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि किसी किसी तरीके से जाओ भगवान के संपर्क में, वो अपना स्वभाव को छोड़ते नहीं। अपना स्वभाव क्या है, अपने बच्चे को देखभाल करना। आगे ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं कि अभी इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने भगवान को पिता के रूप में माना, आगे के श्लोकों में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि माता दाता पितामह पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो इस श्लोक में कृष्ण को माता भी कहा गया है और उनको पिता भी कहा गया है और पितामह भी कहा गया है। ऐसा एक व्यक्ति ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इसमें इस श्लोक के ऊपर श्री वैष्णव आचार्य बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। उनका सिद्धांत का शुरुआत इससे होता है, श्री वैष्णव संप्रदाय का, कि इस जगत में मान लीजिए कोई पति है, वो पति के रूप में ही कार्य करेगा पत्नी के लिए, वो बच्चे के रूप में कार्य नहीं कर सकता, मित्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता, पिता के रूप में कार्य नहीं कर सकता, या अगर एक पत्नी के लिए एक पति है उसके लिए पति मात्र है, वो बच्चा नहीं बन सकता, वो मित्र नहीं बन सकता, वो सहेली नहीं बन सकती, या लेकिन जैसे और एक मित्र है, मित्र मित्र ही रहेगा, आपका वो पिता नहीं बनेगा, आपका वो बच्चा नहीं बनेगा, लेकिन एक डेसिग्नेशन एक ही रहता है, एक संबंध एक ही रहता है। लेकिन कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति है जो आपके लिए हर प्रकार का संबंध में जुड़ सकता है, हर प्रकार का संबंध में जुड़ सकता है। ही कैन बिकम योर फादर, तो कभी मदर बन सकते हैं, कभी पिता बन सकते हैं, कभी माता बन सकते हैं, कभी पितामह बन सकते हैं, कभी आपका बच्चा बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए वो भगवान है, बिकॉज ही कैन टेक एनी रिलेशनशिप विथ यू, तो दैट इज वाई इज सर्व रसा। इसलिए हमारे गोस्वामियों ने, खासकर रूप गोस्वामी पाद ने भगवान की परिभाषा देते हुए भगवान का इंट्रोडक्शन दिया भक्ति रसामृत सिंधु में। कैसा इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने कि अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण का पहचान क्या है, हाउ इज कृष्ण इंट्रोड्यूस्ड इन भक्ति रसामृत सिंधु, ही इज इंट्रोड्यूस्ड एज अखिल रसामृत मूर्ति, ये सारे प्रकार की रसों का मूर्तिमान स्वरूप है, रस मतलब संबंध। तो एक व्यक्ति के साथ हर प्रकार का आदान प्रदान कर सकते हैं। अभी ब्रह्मा जी इधर इस श्लोक में कृष्ण को पिता के रूप में स्वीकार किया, अगले श्लोक में उन्होंने क्या स्वीकार किया, माता के माँ के रूप में स्वीकार किया। तो इट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ कृष्णा, ही कैन बिकम एनी ऑफ दिस पोजिशन, बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। पति है तो पति है, वो पुत्र नहीं बन सकते, तो पति भी है और पुत्र भी है। यशोदामय के लिए कृष्ण पुत्र है, लेकिन वो वही यशोदामय जब, या अन्य वात्सल्य रस के लोग जब उन्होंने देखा कि अग्नि आ गया, तो सब लोग ओ महाबाव अब रक्षा करो, आप हमारे पति हो, ऐसा संबोधित करने लगे, ये बिकेम हस्बैंड फॉर एवरीबडी। तो ऐसा कृष्ण का स्वभाव है। तो देखा जाए इधर ब्रह्मा जी ने कहा कि माई माइनम, मैंने माई जो है, माइयों का जो माई है, या वन हु इज द फॉर द मास्टर ऑफ इल्यूशन, वैसे जो माया का जो प्रभु है उसके ऊपर मैं अपना माया दिखाने के लिए गया, ये मेरी मूर्खता है और इसके वजह से ईक्षितुम मैंने देखा, क्या देखा, आत्मवैभवम, मैं समझ गया आपका वैभव को। इसलिए किसी प्रकार भी भगवान के संपर्क में आए तो भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, अपना जो शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी इन बातों को कहते हैं और पछता रहे हैं, पछताना अति महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आगे देखते हैं किस प्रकार ब्रह्मा जी और आगे पछताते हैं। अथ क्षमस्याच्युतमे रजो भुवौ यजा अथ क्षमस्याच्युतमे रजो भुवौ अथ क्षमस्याच्युतमे रजो भुवौ यजानतस्त्वत्पृतगीशमानिनः अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषा येषोऽनुकम्प्यो मयि नातवानिति अतः क्षमस्वच्युतमे रजो भुवो यजानतस्त्वत्पृतगीशमानिनः अभी ब्रह्मा जी पिछले श्लोक में प्रस्तुत किया, मैं गलती भी किया और मैं मूर्ख भी हूँ, गलती के लिए सजा देना चाहिए, आपके पास दो ऑप्शन है कृष्ण, मुझे सजा भी दे सकते हो और मेरे ऊपर आप अनुकंपा भी कर सकते हो या माफ़ कर सकते हो। तभी इस श्लोक में स्पष्ट रूप में कहा, अभी ये दोनों चीज़ों में मुझे क्या चाहिए, मुझे अनुकंपा चाहिए, माफ़ कर दीजिए, मुझे दंड मत दो। स्वभाव होता है कि नहीं, कौन चाहता है दंड प्राप्त करना, नोबडी वांट्स पनिशमेंट। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे पनिशमेंट मत दो अभी। तो ये भी है भगवान, ये यशोदा भाई की लीला भी ऐसा है, तो जैसे यशोदा छड़ी पकड़ के आई मारने के लिए तो भगवान रोए, तो अस्तित्व उनको रोना नहीं आ रहा था, उनको ज़बरदस्ती रोए, तो क्यों रोना पड़ा, क्योंकि मुझे पनिशमेंट मत दो, अभी उनके माँ के अंदर ये जो कंपैशन है, उनकी दया है, उसको प्रकट करने के लिए भगवान ने रोया, ऐसा एक आचार्य का कहना है। तो कभी कभी लोग आते हैं, शरणागत होते हैं, माफ़ी मांगते हैं, ये उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि बस मुझे दंड मत दो, कुछ भी करो। दंड से बचने के लिए, सुधरने की बात है, लेकिन दंड से बचने के लिए कभी माफ़ी मांगा जाता है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि बड़ा बुद्धिमता से कहते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा नहीं कहा उन्होंने, पहला श्लोक में कहते थे माफ़ कर दीजिए, ऐसा नहीं कहा, दूसरे श्लोक में कहा कि अथ क्षमस्व, अथ क्षमस्व अच्युत। ब्रह्मा जी ने कहा है, कृष्ण आपका एक नाम अच्युत है ना, अच्युत से आप फेमस हो, या अच्युत शब्द का अर्थ क्या है, बड़ा प्रसिद्ध शब्द, प्रसिद्ध नाम है भगवान को अच्युत कहना। अर्जुन ने भी भगवान को अच्युत करके संबोधित किया कि क्षेनयोर उभयोर मध्ये रतम स्थापय में अच्युता। इस श्लोक की व्याख्या में श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान को अर्जुन ने अच्युत करके इसलिए संबोधित किया क्योंकि अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए उनका नाम अच्युत है, भले ही अपना जो स्थिति है उससे च्युत हो जाएंगे, अपना स्वभाव से च्युत नहीं होते, अपना स्वरूप से च्युत हो सकते हैं लेकिन अपना स्वभाव से कभी च्युत नहीं होंगे। थोड़ा सा दार्शनिक चीज है, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक होता है स्वरूप, दूसरा होता है स्वभाव। जैसे भगवान का स्वरूप क्या है, भगवत्ता उनका स्वरूप है, लेकिन उनका स्वभाव क्या है, दयावान होना, टू बी ऑल पावरफुल, टू बी भगवान, ये भगवान का स्वरूप है, लेकिन उनका स्वभाव क्या है, कृष्ण का, कृष्ण का स्वरूप है भगवान होना और कृष्ण का स्वभाव है दयावान होना, कभी दोनों के बीच में क्लैश होता है। अभी अगर भगवान बनेंगे ब्रह्मा जी के सामने तो उनको दंड देना होगा, अगर उनको अपना स्वभाव को दिखाना है तो भगवत्ता को त्याग करना होगा, अभी दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है। जब इस प्रकार का कन्फ्यूजन होता है भगवान को, भगवान क्या करते हैं, अपना स्थान या अपने स्वरूप को त्याग करते हैं, अपने स्वभाव को बना के रखने के लिए, तो ये भगवान का स्थिति, इसलिए अच्युत कहा गया है। अच्युत करके भगवान को इसलिए संबोधित किया गया है कि भगवान ने क्या किया, एक सारथी बने, सारथी मतलब ड्राइवर, ये भगवान का स्थान थोड़ी ना है, भगवान किसी का ड्राइवर होता है क्या, नहीं, लेकिन अपनी भक्त वात्सलता, उनकी भक्तों के प्रति वात्सलता दिखाने के लिए, वात्सल्य दिखाने के लिए, अर्जुन की वाणी को, उनकी आज्ञा को स्वीकार करने के लिए भगवान ने क्या किया, अपना जो स्थिति है या अपना जो स्वरूप है उसको त्याग कर दे, भगवत्ता नामक स्वरूप को त्याग करके उनका स्वरूप को बना के रखा, तो इसलिए अच्युत करके इसे संबोधित किया जाता है भगवान को, क्योंकि वो कभी भी अपना जो स्वभाव को त्याग नहीं करते, ही नेवर गिव्स अप हिज स्वभाव, हिज नेचर। ये हमारा भी है, हमारा जो स्वभाव है उसको बना के रखने के लिए अपना जो स्थान को भी त्याग कर देंगे, उधर से निकल जाएंगे, अपना स्थिति से भी निकल जाएंगे, ये इट इज़ वेरी नेचुरल। हमारा स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण है, एवरीबडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू स्वभाव, तो भले उसके लिए जो आर्टिफिशियल सिचुएशन है उसको त्याग करना पड़े। तो ब्रह्मा जी इसी बात को कह रहे हैं, हे भगवान आप अच्युत हैं ना, अच्युत मतलब क्या है, जो अपना स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते। मैं जानता हूँ आप दंड देना चाहिए, लेकिन आपका स्वभाव क्या है, माफ़ करना, दया दिखाना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप क्षमस्वा, मुझे आप माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिएगा। तो अथ क्षमस्वाच्युत, ये समझते हुए कि रजोभो मतलब मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ ना, मैं रजोगुण के साथ खेलता कूदता हूँ, कभी कभी गलती हो जाता है, क्योंकि रजोगुण के संपर्क में हूँ मैं, रजोभो ही अजानतस, मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञान में मैंने ये सोचा तवत पृथगीश मानिनः, मैं आपसे कुछ अलग ईश्वर हूँ ऐसा मान के बैठा हूँ, अस्तित्व में आप ही एकमात्र ईश्वर हो, मैं सोच रहा था कि मैं ईश्वर हूँ, और ईश्वर तो हूँ मैं, अनेकों जीवों को नियंत्रण कर रहा हूँ, लेकिन ये सोचने लगा कि मैं आपका भी ईश्वर हूँ, लेकिन ये बात भूल गया कि आप मेरे ईश्वर हो। पृथगीश मानिनः अवा अजाव लेपांद तमो अंध चक्षुषा, तो अंध चक्षुषा, जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण ने दिया, माय आईज वर ब्लाइंडेड बाय द डार्क इग्नोरेंस विच कॉस्ट मी टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अनबॉर्न क्रिएटर। क्यों पृथगीश मानिना, क्योंकि अवलेप मतलब अंधतम, ये अंधकार का जो आवरण होने की वजह से मैं अंधा हो गया, मैं बराबर आपको देख नहीं पाया, कि ये शानुकंप्या मई नाथवान इति, ये शानुकंप्या, इसलिए मेरे ऊपर अनुकंपा दिखाइए, आप करुणा दिखाइए, करुणा दिखाते हुए ये समझते हुए कि नाथवान इति, क्योंकि मैं आपको मेरा नाथ करके स्वीकार करता हूँ, यू आर माई मास्टर। जो पहले श्लोक में उन्होंने पिताजी माना, अभी क्या है, अपने ब्रह्मा जी भगवान को मास्टर यानी एक मालिक, क्या मेरे आप मेरे प्रभु हो, इस प्रकार स्वीकार कर रहे। तो ये स्वभाव होता है, एक योग्य मास्टर प्रभु होता है, उनको अपना दासों का जो गलतियां उसको माफ़ करना चाहिए, ये भगवान ने भी किया है। इतना हद तक कि मान लीजिए अपना सेवक अगर कोई गलती करता है, तो भगवान का स्वभाव है कि वो अपना सेवकों को गलती स्वीकार नहीं करते, दंड नहीं देते, वो सोचते हैं कि मेरा गलती है। ये प्रसंग आपको मालूम है कि चार कुमारों का, जब चार कुमार आए, जय विदय ने उनको रोक दिया, नहीं आप नहीं जा सकते हो, तो बड़ा सा उन दोनों के बीच में विवाद हुआ, तो भगवान भागते भागते आए, तो समझ गए ब्राह्मण क्रोधित है, और जय विजय तो अपने हैं, तो उनको समझ में आया कि ये लोग गलती किया, उनको छोड़ा नहीं अंदर। तुरंत चार कुमारों की महत्ता को गुणगान करते हैं भगवान और माफ़ी मांगते हैं। देखिए भगवान माफ़ी मांगते हैं किनसे? चार कुमारों से। अस्तित्व में उन्होंने कहा कि चार कुमारों से, ये मेरे सेवक है, मेरे डोर की मेरे द्वारपाल है, इनकी गलती उनका नहीं है, मेरा गलती है। अस्तित्व में सबसे बेस्ट मास्टर वो है जो इस प्रकार स्वीकार करते। इसलिए श्रीपाद यमुनाचार्य इस श्लोक में कहते हैं, स्तोत्रंकर श्लोक है जहाँ दासिरस का वर्णन हुआ है, सनात जीवितम, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक बिफिटिंग मास्टर, इसलिए भगवान को कहा जाता है सनाथ। सनाथ मतलब एक योग्य नाथ, बिफिटिंग मास्टर। इसी बात को कहा गया है कि नाथवान थी, मैं आपको नाथ करके स्वीकार करता हूँ, मैं आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे मास्टर हो। इसलिए सर्वेंट का जो दोष है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। और आपका तो स्वभाव है ही, ब्रह्मा जी का कहना यह है कि आपका तो स्वभाव है ही, आपका जो दास का जो गलतियां हैं अपना गलती करके स्वीकार करते हैं। आपने मुझे ब्रह्मा बनाया और मेरी गलती जो है ये मेरा नहीं है, तो आपका ही समझ लीजिएगा। नाथवान थी। ये देखिए दास बनने में कोई तकलीफ नहीं है अस्तित्व में। क्योंकि जिम्मेदारी तो कुछ है नहीं। है कि नहीं? गलती हो गया तो हो गया, हाथ उठा दिया, हरी बोल। अभी जो मालिक है, जो अपने आप को मालिक समझता है, उसी का परेशानी। इसलिए इसलिए हमेशा दास बन के रहना चाहिए, ऑलवेज बी ए सर्वेंट। जैसे मालिक बनने की प्रवृत्ति रखेंगे, नाथ बनने जाएंगे, सारा जितने भी गलतियां आप करो ना करो सब आपके ऊपर दिखाएंगे, है कि नहीं? हाँ, इसलिए खास करके मंदिर के अध्यक्ष को ध्यान रखना होगा इसके लिए, है कि नहीं? कुछ भी कहीं भी होते देखो इसकी वजह से हुआ, और उनको मालूम भी नहीं ऐसा हुआ करके। अगर मान लो कि सच में गलती किसी का है तो उसको बुलाया जाए, क्यों गलती किया? मैं क्या कर सकता हूँ, आप ऐसा हो तो मैं क्या करूँगा। ये आपके वजह से हुआ, पता नहीं घूम घूम के उधर ही आता है। तो ब्रह्मा जी का भी यही है कि नाथवान थी, आप मेरे नाथ हो, मैं तो दास हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, है कि नहीं? सो इट इज़ वेरी गुड टू बी ए सर्वेंट, और इट इज़ वेरी गुड टू बी ए फूल। इससे पता लगता है, क्योंकि ऐसा करने से तुरंत हमको भगवान की दया अनुकंपा प्राप्त होती है। इसलिए इस श्लोक में क्षमस्व और अनुकंपा, आपकी अनुकंपा आपका स्वभाव है, इसलिए आप क्षमा करो। क्यों? क्योंकि आप मेरे प्रभु हो, मैं आपका दास हूँ, और दास के गलतियों को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता है, तो उनको ज़्यादा माफ़ कर देना चाहिए। ऐसे कभी कभी मैं अपने लेक्चर्स में ये जो व्यवहारिक बातों को भी कहता हूँ, क्योंकि जैसे नीति शास्त्र से कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए, खास करके दासों की, यानी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी आपके जो सेवक है उनका दोष, स्त्रियों का दोष और बच्चे का दोष, इसको माफ़ कर देना चाहिए। भले ही वो कुछ भी हो, कितना ही बड़ा किए, कभी भी उनको सज़ा नहीं देना चाहिए। नेवर गिव पनिश। आप अगर पनिशमेंट दोगे तो उससे बड़ा गलती करेंगे, जितना पनिशमेंट देंगे उतना बड़ा गलती करके दिखाएंगे, ये उनका स्वभाव है। नेवर दे शुड बी पनिश्ड। इसलिए क्षत्रिय धर्म है, स्त्रियों से युद्ध नहीं करेंगे, और बच्चा है तो उससे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? युद्ध में पनिशमेंट होता है, क्योंकि वो अगर करेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इट विल नॉट बी देयर। केवल माफ़ी कर देना चाहिए, यू शुड जस्ट रेस्पेक्ट। अगर पनिशमेंट करने जाएंगे तो रिएक्शन बहुत गहरा आएगा, इट विल बी वेरी, बहुत गहरा रिएक्शन आएगा। इसलिए यू शुड ऑलवेज फॉरगिव देम। तो आगे आगे वाला श्लोक देते हैं, 11वां श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है। क्वाहं तमद्महोऽहं कचराग्निवाभूर् संवेष्टितांडकट सप्त ಸ್ಥವಿತಸ್ತಿಕಾಯಃ ಕ್ವೇದ್ರೇಗ್ವಿಧಾ ವಿಗತಾಂಡ ಪರಾಣುಚರ್ಯ ವಾತಾಧ್ವರೋಮ ವಿವರಸ್ಯ ಚ ತೇ ಮಹಿತ್ವಂ ಕ್ವಾಹಂ ತಮೋ ಮಹದಹಂ ಕಚರಾಗ್ನಿವಾರ್ಭೂ ಸಂವೇಶ್ಚಿತಾಂಡಘಟಸಪ್ತವಿತಸ್ತಿಕಾಯಃ ಕ್ವೇದ್ರಗ್ವಿಧಾ ವಿಗತಿತಾಂಡಪರಾಣುಚರ್ಯ ವಾತಾಧ್ರುವೋಮವಿತ್ತಸ್ಯ ಚ ತೇ ಮಹಿತ್ವಂ ತೋ ಇದರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕಹತೆ ಕಿ ಮೇ ತೋ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೂಂ ಮೇರೆ ಹಾಥ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಗುಣ ಲಂಬಾ ಮೇರಾ ಶರೀರ್ ಹೈ ಔರ್ ಮೇ ಕಹಾಂ ಛುಪಾ ಹುವಾ ಹೂಂ ಆಪ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆ ಅಂದರ್ ಛುಪಾ ಹುವಾ ಹೂಂ ಆಪ್ಕಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಿನ್ ಚೀಜೋ ಸೆ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೈ ಮಹತ್ತತ್ವ ಸೆ ಬನಾ ಹೈ ಔರ್ ಅಹಂಕಾರ ಸೆ ಬನಾ ಹೈ ಔರ್ ಈಥರ್ ಆಕಾಶ ಸೆ ಬನಾ ಹೈ ಔರ್ ವಾಯು ಸೆ ಬನಾ ಹೈ ಜಲ್ ಸೆ ಬನಾ ಹೈ ಪೃಥ್ವಿ ಸೆ ಬನಾ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೈ ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೆ ಅಂದರ್ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೂಂ ಮೇ ಆಪ್ಕಾ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರ ಹೈ ಅನಂತ ಹೈ ಆಪ್ಕೆ ರೋಮಕೂಪ್ ಸೆ ಇತನಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋ ರೇ ಉನ್ಮೇ ಸೆ ಏಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೆ ಅಂದರ್ ಛುಪಾ ಹುವಾ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಜೀವ ಹೂಂ ತೋ ಜಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಆಪ್ ಕಿಟಕಿ ಕೋ ಥೋಡಾ ಸಾ ಖೋಲಿಯೇ ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಸೆ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಗೋಲ್ ಗೋಲ್ ಸೆ ಕುಚ್ ನಿಕಲ್ತೆ ಹೈ ಲೈಟ್ ಮೇ ಧೂಲ್ ಕಿ ಕಣ್ ನಿಕಲ್ತೆ ಹೈ ವೈಸೆ ಆಪ್ಕಿ ರೋಮ್ ಕೂದ ಸೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿಕಲ್ ರೇ ಉನ್ಮೇ ಸೆ ಏಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಜೀವ ಹೂಂ ಮೇ ತೋ ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕಿ ದೀನತಾ ಹೈ ತೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಸಂಬೋಧಿತ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಕಾ ಔರ್ ಜಿಸ್ ವಿಷ್ಣು ಕಾ ಗರ್ಭೋದಾಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಕಾ ಮೇ ಭಿ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಯೇ ಆಪ್ಕಾ ಏಕ್ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಗರ್ಭೋದಾಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೈ ಯೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೆ ಶರೀರ ಸೆ ರೋಮಕೂಪ ಸೆ ಅನೇಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿಕಲ್ ರೇ ಜಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಧೂಲ್ ಕೆ ಕಣ ದಿಖಾಯಿ ಪಡತೆ ಹೈ ಆಕಾಶ ಮೇ ಔರ್ ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೆ ಅನೇಕೋ ಆವರಣ ಹೈ ಉನ್ಮೇ ಸೆ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಜೀವ ಹೂಂ ಮೇ तो ये श्लोक का सार यही है दीनता। तो जब व्यक्ति दीन होता है, भक्त दीन होता है, भगवान का महिमा को गुणगान करता है, तो अपने आप को दीन मानना ये दूसरा बात है। सबसे पहला मूर्ख मानना, दूसरा दीन मानना। इसके द्वारा भगवान की अनुकंपा को हम जागृत कर सकते हैं, अपने हृदय में धारण कर सकते, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी अपने आप को दीन मान रहे हैं, ही इज़ कंसीडर्ड दीनहीन मानना। तो इसलिए शास्त्रों में अन्य प्रार्थनाओं में ये शब्द बार बार आता है, टू कंसिडर वन सेल्फ टू बी यूजलेस, वन टू बी कंसिडर टू बी ए फूल, अगर कुछ है मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई एम टोटली यूजलेस। तो इस भाव से ब्रह्मा जी भगवान की शरणागति स्वीकार कर रहे। वैसे और एक श्लोक भी करना था जिसमें ब्रह्मा जी भगवान को माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। ये ब्रह्मांड के अंदर या गर्भ के अंदर बच्चा जो है माँ को लात मारता है, लेकिन माँ उस गर्भ के अंदर बच्चे के प्रति कोई दंड नहीं देती या उसके प्रति गुस्सा नहीं होती। वैसे ही ये ब्रह्मांड के अंदर मैं भी हूँ और मैं भी उस प्रकार का गलती किया है जैसे बच्चा करता है। जिस प्रकार माँ का स्वभाव है कि बच्चे के प्रति ज़्यादा गुस्सा ना होना, तो आप भी मुझे इस प्रकार क्षमा कीजिए। तो ऐसा ब्रह्मा जी अगले श्लोक में प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न तो पूछे, नहीं क्वेश्चन।
सुना है, व्यक्ति को जब किसी भक्त सुनना चाहिए अपने आप को मूर्ख की तरह सोच के सुनना चाहिए, गुरु का जाना चाहिए प्रैक्टिकली, जैसे कि हम कोई लेक्चर सुनते हैं कुछ भी, तो नेचुरली हमें पहले से पता होता है, मतलब पता होता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, सब कुछ पता ही होता है, तो किस तरह प्रैक्टिकली क्या भाव होना चाहिए?
अच्छा प्रश्न, यानी खास करके जब ऐसा व्यक्ति प्रवचन देता हो जो नवदीक्षित तो अभी नए नए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके क्या भाव होना चाहिए वो प्रसंग में आप पूछ रहे हैं कि नहीं, तो उसमें ए भाव होना चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने अपने शिक्षा गुरु से सुना था, क्यों सुना था, क्योंकि मैंने यही प्रश्न पूछा उनसे, थोड़ा सा डायरेक्टली प्रश्न पूछा, इनडायरेक्टली नहीं पूछा, तो मैंने पूछा उन्हें, जब उन्होंने क्योंकि वो मैं क्लास दे रहा था तो उनका आना नहीं था, लेकिन आके बैठ गए, तो मुझे थोड़ा घबराहट हो रहा था, तो सब होने के बाद, पूरा क्लास होने के बाद मैंने ऐसे पूछा कि आप क्लास में क्यों बैठे थे, तो मैं क्या क्या मुझे सुनने का अधिकार नहीं क्या तो आपको सुनने की आवश्यकता है, मुझसे थोड़ी दो, आप तो किसी और से सुन सकते हैं, लेकिन मुझसे क्यों सुन रहे हो आप तो मैंने ऐसे पूछा कि क्या सुन रहे थे, मैं बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं वो सुन रहे थे? उन्होंने बोला नहीं, ऐसा भाव से कभी सुनना नहीं चाहिए, क्या व्यक्ति बराबर बोल रहा है कि नहीं, ऐसा भाव से सुनना नहीं चाहिए, मैं ऐसा कोई क्लास नहीं सुना। मैंने कि फिर किसके लिए सुन रहे थे, प्रश्न तो आता है, तो मैंने सोचा कि वो मैं बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं वो सुनने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि एक भक्त जो है वो किसके मुख से क्या मेरे लिए आ रहा है वो सुनने के लिए तैयार रहता है, इसमें मेरे लिए क्या है ये भाव से सुनना चाहिए। वो कुछ भी बोलता हो उसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ है, ये भाव से प्रत्येक क्लास सुनना चाहिए, वॉट इज देयर फॉर मी। क्योंकि वो भक्त जो है व्यासासन की ओर बैठा है, चाहे वो एलिमेंट्री चीज़ें क्यों ना हो, व्यास के प्रतिनिधि है, व्यास ने जो कहा वही कह रहा है ना, तो कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, लेकिन उनके मुख से सुनने से जान जाते हैं, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ इट। तो इस भाव से सुनना चाहिए कि ये अस्तित्व मेरे लिए है, और ये जो कह रहा उसके अंदर कुछ ना कुछ मेरे लिए है, क्योंकि हम जब प्रवचन सुनते हैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं सुनते हैं, नॉलेज के लिए सुनते हैं, हम जानकारी के लिए नहीं सुनते, जानकारी जो है दिमागी स्तर का बात है, और हृदय की स्तर की बात नहीं है, साक्षात्कार का स्तर की बात नहीं है। प्रत्येक क्लास में जानकारी प्राप्त करने के लिए मत बैठो, जानकारी तो आपको है, कृष्ण भगवान है मैं दास हूँ, जानकारी नहीं क्या, यू डोंट यू नो दिस, इसकी ज्ञान नहीं है उनका, जानकारी मात्र है, तो उसको नॉलेज को नॉलेज के रूप में परिणित करने के लिए, तो प्रत्येक क्लास में चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, प्राय भागवतम क्लास ऐसा होता है मेरे लिए क्या है इस भाव से बैठना चाहिए। प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों की क्लास में बैठते थे, सोलेनेस राधानाथ महाराज भी बैठते अपने शिष्यों की क्लास में, और कैसे ऐसा ध्यान से मैंने देखा, एक वीडियो देखा उनका, वो एक ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे, जूनियर ब्रह्मचारी भी, सीनियर भी नहीं, महाराज ऐसे एकदम बहुत आवेश से देख रहे थे, है कि नहीं, और ये भक्त का लक्षण है, भक्त का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, चाहे वो प्रेम किसी के द्वारा भी आता हो वो सुनता है, अपने लिए क्या है उस भाव से सुनना चाहिए, वी शुड हियर, ये हमारी भक्ति है। भागवतम क्लास में बैठना भगवान की सेवा है, पिछली बार मैंने इस बात को कहा था, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब आया था, भगवान के गुणगान करना चाहिए, ये उनका ऑफरिंग है। मान ले सामने कोई नहीं है, क्या क्लास नहीं होगा उस दिन? जैसे कभी रथ यात्रा हुआ समझ लीजिए, सारे भक्त लोग गए और उस दिन कोई प्रसाद खाने वाला नहीं है, क्या भोग नहीं लगेगा? नहीं। ऐसे ही ये भी ऑफरिंग है। कैसे ऑफरिंग है? भगवान जब ग्रहण करते, भोग ग्रहण करते, उस समय उनकी स्तुति करना, ये 64 अंगों की भक्ति में है। और उसमें आप बैठे हो तो आप भाग ले रहे हो, जैसे पुजारी आरती करता है। आरती वही नहीं करता है, जितने भी लोग खड़े हैं दर्शन कर रहे हैं, वो भी उस आरती में भाग ले रहे हैं, उस ऑफरिंग में भाग ले रहे हैं, दे आर ऑल्सो ऑफरिंग। तो इसी प्रकार जो वक्ता है भागवतम का, वो भागवतम को ऑफर कर रहा है, जो भी बैठे हैं श्रोता है उस ऑफरिंग में भाग ले रहे हैं। तो जो इस सिद्धांत को जानता है वो कभी चुकता नहीं है अपनी। ये थोड़ा सा इस कान में भाव आ गया, इमेच्योर टी की वजह से। लोग पूछते कौन दे रहा है क्लास, ये दे रहा है तो आएंगे, नहीं तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा दुख की बात है, इट्स नॉट बी सो। जैसे बाहर कांग्रीगेशन में रहते हैं तो उनको रोज़ आना मुश्किल होता है, तो इस प्रकार उनका प्रश्न है तो इतना तकलीफ़ नहीं है। लेकिन मंदिर में निवासी ब्रह्मचारी तो ऐसा कभी नहीं पूछना चाहिए, वी शुड नेवर, कंपल्सरी, इट शुड बी कंपल्सरी। क्योंकि और बहुत सारे झंझट में फंसे हुए रहते हैं, इसलिए तो उनको इस प्रकार पूछ के आएंगे तो तकलीफ नहीं इतना। लेकिन मंदिर के निवासी ब्रह्मचारी को कम से कम इट शुड बी कंपल्सरी, चाहे कोई भी दे रहा हो, चाहे आपका दुश्मन भी दे रहा हो, इवन इफ योर एनिमी इज गिविंग सिट। ठीक है, समाप्त करेंगे। कोई और कोई प्रश्न है तो पर्सनली बात करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।